ओम शांति, ओम शांति। इन प्रातःकालीन राजयोग अभ्यास के सत्रों में आपने समझा है राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेहपूर्ण संबंध। राजयोग सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ संबंध है और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाला संबंध है। राजयोग हमें स्वयं का राजा बनाता है, यानी कर्म इंद्रियों पर हमारा अधिकार होने लगता है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। सामान्यतः हम कर्म इंद्रियों के गुलाम होते हैं, जैसे इंद्रियां हमें चलाती हैं वैसे हमारा जीवन चलता है। राजयोग हमें राजाओं का भी राजा बनाने वाला योग है। राजाओं के राजा माना देवता, क्योंकि राजाएं भी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमारे संस्कार राजयोग से दिव्य होते हैं और फिर जो जन्म होता है वो राजाई कुल में देवताई कुल में होता है। इसीलिए कहा ये राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। इस योग में अनेक राज समाए हुए हैं, उन राजों को जानने के बाद ही हम राजयोग करते हैं। आत्मा का राज, परमात्मा का राज हमने समझा, और भी ज्ञान के राज जो जीवन के सत्यों के राज हैं वो हम समझते हैं। और राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, ये किसी गुरु ने महात्मा ने नहीं सिखाया है, लेकिन स्वयं परमात्मा शिव अवतरित होकर के हमें ये राजयोग सिखाते हैं। और इसीलिए राजयोग में अनेक योग जो भी भारत में योग किए जाते हैं इन सब योग समाये हुए हैं। राजयोग मन पर एक बांध की तरह है, जैसे नदी पर हम बांध बनाते हैं तो उस पानी का फिर विभिन्न प्रकार से सदुपयोग होता है, उसको सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, उससे बिजली बनती है, उसे पीने के पानी की तरह प्रयोग करते हैं। और अगर बांध नहीं बनता है, पानी व्यर्थ बह जाता है, या अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो बाढ़ भी आ सकती है, उससे जनमाल की हानि होती है। ऐसे ही मन की शक्तियों का संचय होता है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, यानी हमारा मनोबल बढ़ता है और अपने मन को हम एक दिशा दे पाते हैं। और नहीं तो मन की शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं, और अगर मन की शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं तो फिर इंसान जिस सफलता को पाना चाहता है, जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है, वो उसे नहीं मिल पाती। ऐसे ही राजयोग एक चार्जर की तरह है, जैसे चार्जर से लगाने से फोन या बैटरी चार्ज हो जाती है, विज्ञान के अनुसार डिस्चार्ज होने का सिद्धांत है जब उसके केमिकल कंपोनेंट्स डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब हम उसे चार्जिंग में लगाते हैं तो उसके केमिकल कंपोनेंट्स फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, यानी हमारा जीवन अव्यवस्थित होता है। लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज है तो फिर हमारे मन वचन कर्म ऑर्गेनाइज होते हैं। तो राजयोग जो है वो सभी योगों का फल देने वाला है। ये ज्ञान योग है, ये बुद्धि योग है, ये कर्म योग है, भक्ति योग है, समत्व योग है, हठ योग है, क्रिया योग है, अनेक प्रकार के योग कहा जो भारत में किए जाते हैं। तो राजयोग ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। इसमें हमें समझ मिलती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमारा संबंध और प्राप्ति क्या है, तो उस आधार पर हम ये योग करते हैं। तो ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, इसीलिए ये ज्ञान योग है। फिर ये बुद्धि योग है क्योंकि हम राजयोग अभ्यास के लिए मन और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मन एक माध्यम है और सूक्ष्म माध्यम है, यानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी विचार तरंगे परमात्मा तक जाती हैं और फिर हम परमात्मा की शक्तियों का भी अनुभव करते हैं। आज विज्ञान के युग में हम अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं। हम मोबाइल यूज करते हैं, फोन से हम किसी से भी दुनिया में बात करते हैं, और उसकी प्रक्रिया क्या है कि हमारे मोबाइल सेट से तरंगे निकलती हैं, टॉवर से होते हुए वो दूसरे के जिससे हम बात कर रहे हैं उसके सेट तक पहुंचती हैं, और फिर वही प्रक्रिया वहां से होती है और हम ऐसे ही बात कर रहे होते हैं जैसे कि हम सामने बात कर रहे हैं। दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है। आज हम रिमोट का प्रयोग करते हैं, रिमोट से कितने साधनों को ऑपरेट करते हैं, दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है। टीवी चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, कार को ऑपरेट करेंगे, या अंतरिक्ष तक गए हुए व्यक्ति को भी कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे ही मन से जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हमारी विचार तरंगे भले दिखाई नहीं देती लेकिन वो परमात्मा तक पहुंचती हैं और हम उसका अनुभव करते हैं। और वैसे भी भक्ति में भी हम भगवान से जो भी वार्तालाप करते हैं मन ही माध्यम है। हम मूर्ति के सामने जाकर खड़े होते हैं तो हमें पता है कि मूर्ति तो नहीं सुनती है, मूर्ति तो जड़ है, लेकिन फिर भी हम अपने मन की बात कहते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं, भगवान ने मेरी सुन ली। तो कैसे सुन ली, कि भगवान जहां भी है उस तक मेरी बात पहुंची, तो मन ही माध्यम बना। तो राजयोग में हम मन और बुद्धि से जिसे हम अंतर्चक्षु भी कहते हैं उससे हम परमात्मा को देखते भी हैं और मिलन भी मनाते हैं। फिर राजयोग कर्म योग भी है क्योंकि कर्म करते हुए परमात्मा की याद, उसे हम कर्म योगी कहते हैं। सामान्यतः हम सांसारिक स्मृतियों में कर्म करते हैं, काम करते हैं और मन में कोई ना कोई किसी व्यक्ति के, किसी भी कार्य के, इधर उधर के विचार चलते रहते हैं। लेकिन यदि उस समय हमें ईश्वर की याद है तो फिर वो कर्म योग हो जाता है और सत्कर्म बन जाता है। और जो सत्कर्म है वो हमें पदम गुना फल देने वाला है। सामान्यतः कर्म का नियम होता है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, एक का एक ही मिलेगा, लेकिन सत कर्म जो है वो उसका फल मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे हम कर्मों की तुलना बीज से करते हैं, जैसा बोएंगे ऐसा हम कहते हैं। तो कई प्रकार के बीज होते हैं, अगर हमने गेहूं, बाजरा या मक्का बोया तो एक बीज से अनेक बीज होते हैं, एक गेहूं से अनेक गेहूं, एक मक्का से अनेक मक्का, लेकिन एक फसल होती है। फिर अगर हमें दोबारा चाहिए तो फिर से हमें उसे बोना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया है, आम, अमरूद, सेब, नारियल, तो एक बार हमने बोया, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तुरंत फल नहीं मिलता है, लेकिन जब वो फल देगा तो फिर हम ही नहीं खाते, हमारी पीढ़ियां भी उस फल को खाएंगी, अनगिनत फल। तो ये कर्म योग का ऐसा फल है कि हम वर्तमान में ही इसका फल नहीं पाते, लेकिन आने वाले अनेक जन्मों तक वो हमारी प्रारब्ध या भाग्य बनता है। और कर्म योग हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी कर सकते हैं, ये तो हमारे दैनिक कर्म है, करते ही हैं हम, और इसके लिए हमें अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो कई बार हम सोचते हैं, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, कहाँ समय है हमारे पास। लेकिन राजयोग हम चलते फिरते कोई भी कर्म करते भी कर सकते हैं, क्योंकि ये याद है, कोई कठिन क्रिया हमें इसमें नहीं करनी है। जैसे आपने समझा कि राजयोग में कोई हम आसन, प्राणायाम या अन्य कोई कठिन क्रियाएं नहीं करते हैं, तो हम सहज किसी को भी जैसे याद करते हैं, ऐसे ही हम ईश्वर को भी याद कर सकते हैं, वो हमारा पता है। तो इसीलिए कर्म योगी बनकर हम राजयोग करते हैं। फिर राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति माना परमात्मा से स्नेह, परमात्मा से संबंध, उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव, वो संबंधों में ही होता है। तो जितने भी भक्त हुए ना, सच्चे भक्त जिन्हें हम कहेंगे, उन्होंने भगवान से कोई ना कोई संबंध का अनुभव किया। जो हम गायन करते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सेवा तुम्हारे, ऐसे गाते हैं ईश्वर के बारे में। या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और लास्ट में कहते हैं त्वमेव सर्वमम देव देव, यानी भगवान से हमारे सर्व संबंध हैं। हम जो संबंध का उससे अनुभव करना चाहें, वो परमात्मा हमारे साथ निभा सकता है ना, वो शक्ति है, वो ऑल इन वन है। दुनिया में सब संबंध अलग अलग होते हैं, माता अलग, पिता अलग, भाई अलग, बहन अलग, मित्र अलग, पति अलग, पत्नी अलग, बच्चे अलग, गुरु अलग, टीचर अलग, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन एक में ही सब का अनुभव एक ईश्वर हमें करा सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। तो ऐसा ही भक्तों ने परमात्मा के साथ अनुभव किया, और उन्होंने कोई ना कोई संबंध से भगवान को याद किया, अपना एक संबंध जोड़ लिया उसके साथ। जैसे प्रहलाद ने उन्हें पिता के रूप में याद किया, मीराबाई ने उन्हें पति के रूप में याद किया, अर्जुन ने भी उन्हें मित्र के रूप में याद किया। तो जब समय आया तो भगवान ने उस संबंध को जरूर निभाया भी, प्रहलाद की रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, अर्जुन का साथ दिया। तो राजयोग में भी हम भगवान को सर्व संबंधों से याद करते हैं। जो संबंध हमें ईश्वर से प्रिय है, या जिस समय जो संबंध की आवश्यकता है, वो हम उनसे अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए राजयोग भक्ति योग भी है, राजयोग संन्यास योग भी है। संन्यास का अर्थ भारतीय संस्कृति में है जो घर बार छोड़कर कहीं तीर्थ पर, कहीं जंगल में जाकर आश्रम बनाकर भगवान के भजन में, उसकी स्मृति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन राजयोग में हम ऐसा संन्यास नहीं करते, क्योंकि कई बार संन्यास से फिर भ्रम होता है, ये भ्रम होता है कि कहीं हमें कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं, हमारी तो प्रवृत्ति है, जिम्मेवारियां हैं, कर्तव्य हैं, संबंध हैं, तो ये तो हम नहीं छोड़ सकते और हम छोड़ना भी नहीं चाहते ना? तो राजयोग हमें संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, संबंधों का निर्वाह करते हुए भी संन्यास यानी बुराइयों का संन्यास सिखाता है। संसार का त्याग नहीं, कर्मों का त्याग नहीं, लेकिन संसार में रहते हुए विकारों का संन्यास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत, ये जो हैं ये मनुष्य को दुख देने वाले विकार हैं, हमारे जीवन में विष घोलते हैं। इन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन शक्ति नहीं, विधि नहीं, कैसे इनको छोड़ें? तो परमात्मा हमें वो विधि बताते हैं और शक्ति देते हैं कि इन बुराइयों का संन्यास हम कर सकें। तो संसार में रहते हुए बुराइयों को छोड़ना, ये उस संन्यास से भी महान संन्यास है। हाँ, कोई घर बार छोड़ करके जंगल में बैठ गया या तीर्थ पर बैठ गया लेकिन अपने विकारों को नहीं छोड़ पाया, ऐसे हम देखते हैं। आज कितने महात्मा हैं जो जेल में हैं, तो क्यों जेल में हैं? कि सन्यासी तो हो गए लेकिन अपने विकारों को नहीं छोड़ पाए, तो वो सन्यास को बदनाम करते हैं। तो परमात्मा हमें ऐसा सन्यास नहीं सिखाते। फिर राजयोग समत्व योग भी है। समत्व माना मन सदा हर स्थिति में शांत, संतुलित और स्थिर रहे। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इससे हम गुजरते हैं। कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल भी होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है, कभी हमारी निंदा भी होती है, कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी भी होते हैं। लेकिन जो अति की स्थितियां हैं, जैसे एक राजयोगी सुख में, सफलता में, अहंकार में नहीं आता, लेकिन दुख और असफलता में वो बहुत निराश और हताश भी नहीं होता, क्योंकि मालूम है हर स्थिति परिवर्तनशील है। ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। तो हर स्थिति में वो मन को शांत रखने की शक्ति, मन को स्थिर रखने की शक्ति ये योगी में होती है, और यही योग की सिद्धि है। योग की सिद्धि ये नहीं कोई चमत्कार होने लगेंगे। कई बार ऐसा सोचते हैं कि क्या योग से हमें ऐसी सिद्धियां मिलेंगी, जैसे हमारे यहाँ कुछ संत ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि वो कोई मंत्र का जाप करेंगे, जिस वस्तु की इच्छा करेंगे वो उनके सामने हाजिर हो जाएगी, या वो किसी को भभूत देंगे और कहेंगे कि आप इसको लेंगे तो आपका रोग दूर हो जाएगा, आपका कष्ट निवारण हो जाएगा, जो भी कोई मंत्र देंगे या भभूत देंगे। और कई बार सचमुच ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि ये लेने वाले की गहरी आस्था होती है जो काम करती है। कोई भभूत से वो ठीक नहीं होता है, लेकिन इससे उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे किसी का जीवन परिवर्तन तो नहीं होता। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया जो अल्पकाल के। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है कि एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि आपके आश्रम के पास ये जो नदी बहती है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, कितना समय लगा आपको? कहा, कुछ वर्ष लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर थोड़े समय के बाद उनका दूध वाला आया। वो नदी पार गांव से आता था, तो उन्होंने उसको सन्यासी के सामने ही पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा एक पैसे में, उस जमाने में एक पैसा दो पैसा चलता था। तो फिर उन्होंने सन्यासी को कहा कि देखो जो काम मेरा दूध वाला एक पैसे में कर सकता है, उस काम को करने में आपने कितने साल लगा दिए, आपने क्यों सन्यास किया है? तो कहा भगवत प्राप्ति के लिए। तो बोला यही आपने वो साधना की होती तो आज ईश्वर तक आप पहुंचे होते। तो जो सच्चे संत थे उन्होंने इस तरह की अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, राजयोग से हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, यही परिवर्तन सबसे बड़ी सिद्धि है, सफलता है। ऐसे ही राजयोग हठ योग भी है। भक्ति में हम देखते हैं कि लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए या ईश्वर का दर्शन करने के लिए भगवान से हट करते हैं। हट माना एक तरह की एक जिद, 9 दिन तक निर्जल रखेंगे, है ना, कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, देवी की उपासना करेंगे, जब तक मुझे देवी का दर्शन ना हो जाए या मुझे देवी से ये प्राप्ति ना हो जाए तब तक चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन हम अपना ये तप नहीं छोड़ेंगे, या कितने मीलों तक पैदल चलकर जाएंगे बिना जूता चप्पल पहने, ना कठिन रास्तों से गुजरकर। हम देखते हैं ऐसे लोग यात्रा करते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो ये हट है ईश्वर से। तो जब हम इस तरह का हट करते हैं जरूर उनकी भावना पूरी होती है, लेकिन राजयोग में हम ऐसा हट नहीं करते। हम दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा करते हैं भगवान से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कि आज सारा दिन कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो कई स्थितियां उत्पन्न होंगी जब मुझे गुस्सा आएगा। जैसे एक व्रत किया हमने, हम भक्ति में भी जब व्रत रखते हैं तो फिर हम व्रत नहीं तोड़ते हैं, फिर भले ही कोई स्वादिष्ट भोजन की थाली हमारे सामने ले आए तो भी हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, आज नहीं, आज मेरा व्रत है। तो हम व्रत नहीं तोड़ते कि कहीं मेरे इष्ट मुझसे नाराज ना हो जाए ना। तो यहां भी हमने व्रत किया, भगवान से संकल्प किया कि आज चाहे जो भी हो मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो फिर कोई मेरी बात नहीं मानेगा या कोई मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा या कोई मेरी ग्लानी कर देगा जब हमें गुस्सा आता है, या कोई जो है मेरे से झूठ बोलेगा, धोखा दे देगा, तो भी हम गुस्सा, ये स्थितियां दिन में कभी भी उत्पन्न होती रहती हैं, कोई भी ऐसा कर देता है और तभी हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि बिना कारण के तो हम गुस्सा नहीं करते हैं। तो भी हम नहीं करते, और अगर एक दिन हमने उसे जीत लिया तो फिर हमारे अंदर वो विश्वास आ जाता है कि हाँ हम अपनी कमी पर विजय पा सकते हैं। तो इस तरह से राजयोग हमें इन सभी योगों का फल देता है। अब हम सभी परमात्मा को याद तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, हमारी अपनी अपनी विधियां हैं, है ना। राजयोग की क्या विधि है उसको समझने से पहले हम ये समझें कि हम किन विधियों से याद कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में एक पूजा घर बना लेते हैं, हम एक स्थान बना लेते हैं, अगर पूजा घर नहीं है तो एक छोटा सा स्थान जहाँ हम हमारे जो प्रिय इष्ट हैं, देवता हैं, गुरु हैं, उनके चित्र हम रखते हैं और रोज दिया करेंगे या अगरबत्ती करेंगे, कोई स्तुति कर लेंगे, कोई मंत्र कर लेंगे, जो भी हमारी विधि है वो हम करते हैं। और हमारा भाव क्या होता है, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। कोई खास दिन होगा तो हम मंदिर में भी दर्शन के लिए चले जाएंगे। और फिर कैसे दर्शन करके आते हैं, क्योंकि खास दिन में मंदिरों में भीड़ होती है, तो हम जाएंगे लाइन में खड़े होंगे और मूर्ति के सामने खड़े होंगे, एक मिनट भी हम नहीं खड़े हो पाएंगे, हमें आगे चलो आगे चलो, और उसमें भी हम आंख बंद कर लेते हैं तो अभी कौन किसका दर्शन कर रहा है और हम आ जाते हैं। तो ऐसे हम भगवान को याद करते हैं। या कुछ लोग मंत्र जपते हैं, गुरु ने मंत्र दिया या मेरे जीवन में कोई विघ्न आया तो मंत्र कहा गया मुझे इस मंत्र का जाप करो, फिर इतनी बार जाप करो, 108 बार, 1008 बार, 1,00,000 बार, जितनी भी बार उस मंत्र को जपना है। तो जब हम शुरू शुरू में मंत्र जपते हैं तो मन थोड़ा शांत होता है, क्योंकि सांसारिक बातों से निकलकर मन मंत्र में आ गया। लेकिन मंत्र होते हैं संस्कृत में और संस्कृत हमारी भाषा है नहीं, तो हमें मंत्रों के अर्थ ही पता नहीं होते, तो हमारे भाव नहीं जुड़ते, है ना, हमारे भाव भगवान तक पहुंच नहीं पाते। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवास्वा सत्सावितरवारेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदया। अब इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, लगभग मैं समझती हूँ, किसी को आता है इसका अर्थ नहीं, तो हमको उसका अर्थ नहीं मालूम। या हमने कहा ओम नमो शिवाय, सिंपल सा मंत्र है तीन शब्द का, ओम नमो शिवाय, मैं शिव को नमन करती हूँ, इसका अर्थ ये है। तो मुझे न तो ये पता मैं कौन हूँ और ना मुझे ये पता शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, तो मेरा नमन क्या उन तक पहुँचता है। तो हम मंत्र जपते हैं तो संस्कृत में होने के कारण, क्योंकि कनेक्शन तो हो नहीं रहा, तो हमने गिनती से योग लगाना शुरू कर दिया, 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, 1008 बार हुआ कि नहीं हुआ। फिर मुख जपता है सिर्फ और मन घूमता रहता है, तो भगवान से हमारा संबंध तो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। मंत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सलाह, जैसे मंत्रणा हम कहते हैं वो भी माना सलाह, ऐसे ही मंत्री माना सलाहकार। तो मंत्र का मतलब है मन को सलाह देना, ए मन तुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना, ये मैं अपने मन को सलाह दे रही हूं। तो राजयोग में हर एक विचार ही एक मंत्र है, क्योंकि हम मन को सलाह दे रहे हैं, हमने अपने मन को बताया कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, यही मेरा अपना स्वभाव है। अशांति तो बाहर से आती है लेकिन मेरा अपना स्वभाव तो शांति है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। तो ये जो भी संकल्प हम दे रहे हैं मन को, ये मन को हम सलाह दे रहे हैं। और शांति हमसे कितनी दूर है, एक संकल्प की दूरी पर है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हुई और मुझे शांति का अनुभव होता है। फिर कुछ लोग माला जाप करते हैं, आज की पीढ़ी तो नहीं करती लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के हैं वो कई बार माला फेर के भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो माला में हमने राम राम जपा या हरे कृष्ण जो भी हमने शिव शिव का जाप किया, तो वैसे ही होता है, एक दो माला तक तो थोड़ा ठीक है, बाकी फिर हाथ में मणके घूमते हैं और फिर मन अपना काम करना शुरू कर देता है। तो कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरने की बात नहीं है, ये तो मन को ईश्वर में लगाने की बात है। हम क्यों माला फेरें, ताकि मन ईश्वर में लग जाए, हमारा मन परिवर्तन हो जाए, तो वो लक्ष्य हासिल करो। उन्होंने कहा हाथ के में सिर्फ मणके मत घुमाओ। तो राजयोग में हम इन स्थूल आधारों को नहीं लेते, जो ईश्वर से हमारा संबंध अनुभव नहीं करा पाते। किसी भी इंसान को याद करने का जो आधार है, उसी आधार से हम भगवान को याद करते हैं। अब मनुष्य की याद हमें क्यों आती है, हम सब अनुभवी हैं, सब हम याद करते रहते हैं किसी ना किसी को, तो क्या आधार है? परिचय होना चाहिए। सबसे पहले बिना परिचय के तो दुनिया में हम किसी को भी याद नहीं कर सकते। जिसको हम नहीं जानते उसे याद कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों के अरबों लोग रहते हैं, हम कितने को याद करते हैं? जो हमारे मित्र संबंधी हैं, यानी जिनसे हम परिचित हैं। तो परिचय हुआ परमात्मा का, जैसे एक कुमार कुमारी शादी की आयु में है, उनका संबंध तय होना है, तो बुद्धि भटकती है, कौन होगा कौन होगा ना, भविष्य साथी कौन होगा। लेकिन जब संबंध तय हो जाता है फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है, याद ठिक जाती है, अब मन नहीं भटकता क्योंकि परिचय हो गया। तो परमात्मा से भी अब हमारा परिचय हो गया। हो गया सभी का परिचय, ईश्वर से परिचय हुआ, कौन है, कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, बता सकते हैं कोई कौन है जी? हमारे पिता हैं। नाम क्या है? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। और रूप क्या है, कैसे दिखते हैं, ऐसे भी है ना। हाँ, तो ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकार हैं, तो परिचय हो गया, तो अभी हमें उन्हें याद करना मुश्किल नहीं है। फिर संबंध, जिससे संबंध होता है उसकी याद भी आती है। हम ज़्यादा किसको याद करते हैं? जो हमारे परिवार के पति पत्नी बच्चे माँ बाप, अपने आप हमें याद आते हैं। और किसी से कोई स्नेह है हमारा, विशेष स्नेह है, तो उसको तो हमें याद करना ही नहीं पड़ता। हाँ, वो अपने आप ही, वो उसमें ऐसे होता है भूलें कैसे, याद आती है वो अलग बात है, लेकिन कई बार ये स्थिति हो जाती है कि इसको भूलें कैसे, जिनसे बहुत अटैचमेंट होता है किसी को, तो ये भी याद की स्थिति। तो एक हम याद करते हैं संबंध के आधार पर, तीन प्रकार की याद होती है। हम याद करते हैं, याद आती है, और याद सताती है। तो याद करते हैं वो हमें स्वार्थ के आधार पर, हम कहेंगे कि किसी से मेरा कोई काम है, वो मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, या कोई अवसर है और उस पर हमें निमंत्रण देना है, तो हम सब लिस्ट बनाकर एक एक को याद करके कि कोई रह ना जाए, अगर नहीं बुलाया तो नाराज हो जाएंगे, तो ऐसे हम याद करते हैं। फिर दूसरा हमें याद आती है, जैसे कहा जो समीप संबंध के होते हैं उनकी याद हमें आती है, और तीसरी है हमें याद सताती है। तो याद सताती है माना दुख देने वाली याद, जिसको याद करने से हमें दुख होता है। तो कब हमें दुख होता है? जब कोई सदा के लिए हमसे बिछुड़ जाता है, मानो किसी की मृत्यु हो गई, कोई प्रिय है हमारे उनकी मृत्यु हो गई, अब पता है कि वो लौट कर नहीं आएंगे, तो जब भी उनको याद करेंगे मन दुखी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बच्चा बाहर पढ़ता है विदेश में, माँ को पता चलता है बीमार है, अब जा तो नहीं सकते, तो फिर दुखी होंगे कि उसने दवाई ली होगी नहीं ली होगी, डॉक्टर को दिखाया होगा नहीं दिखाया होगा, खाया होगा नहीं खाया होगा। तो ये दुख देने वाली याद। और जो बताया तीसरी याद जो है, जिसको हम याद करते हैं। तो परमात्मा की याद तीनों में से किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? याद करते हैं, याद आती है, याद सताती है। जो समझते हैं हम याद करते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, और जो समझते हैं याद आती है, याद आती है अपने आप, याद आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो भी है। जो समझते हैं याद सताती है, परमात्मा की याद सताती है। हाँ कुछ है तो अभी हम समझेंगे भगवान की याद कौन सी होनी चाहिए। तो परमात्मा की याद सताने वाली याद नहीं होती, क्योंकि भगवान की याद हमें दुख नहीं देती, वो दुख हरता सुख करता है। तो जब भी हम उन्हें याद करेंगे मन सुखी होता है, मन शांत होता है, और वो तो हमसे कभी अलग होता ही नहीं, हम ही अलग होते हैं, हम ही उसे याद नहीं करते। वो तो अविनाशी शक्ति है, सदा ही है, जब भी हम उसे याद करें हमारे लिए हाजिर है। तो इसीलिए परमात्मा की याद सताने वाली याद नहीं होती। परमात्मा की याद हमें आए, हम याद करते हैं वास्तव में, कलयुग में हम स्वार्थ से याद करते हैं। जब तक हमें भगवान से कोई काम नहीं, जैसे जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले हम किसको याद कर रहे होते हैं, इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें सुख में करें ना, कोई जो सुख में सिमरन करे तो दुख आएगा। तो जीवन में कष्ट तकलीफ संघर्ष दुख आते ही भगवान याद आता है हमें, या मुझे कोई अपनी मनोकामना पूरी करनी है, इच्छा पूरी करनी है, तो भी तो स्वार्थ से हम उसको याद करते हैं। याद आती है यानी इतना समीप संबंध हो भगवान से कि उसकी याद आए, वो नहीं है। लेकिन वास्तव में उनकी याद हमें आनी चाहिए। हम आपसे एक एक्सरसाइज कराते हैं। जो आपके जीवन में सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है यानी सबसे ज्यादा याद आता है, उसको आप सोचिए। हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक विशेष स्थान रखता है, आप उसके बारे में सोचिए। फिर नंबर टू पर जो आपको प्रिय है या प्यारा है उसको सोचिए। फिर नंबर तीन पर उसके बाद जिसका स्थान आता है। अच्छा, इन तीनों में किसी के भी, इन तीनों स्थानों में किसी के उसमें भी परमात्मा या ईश्वर का स्थान आया। जो फर्स्ट टू थ्री प्रिय रिलेशन है उनमें किसी में भी ईश्वर का स्थान आया, आया तो उठा सकते हैं हाथ, उठाइए जिसका आया, एक दो तीन। तो ईश्वर से हमारा समीप संबंध नहीं है, इतने प्रिय नहीं है कि उनकी याद हमें अपने आप आए। तो हम याद करते हैं, जैसे मैंने कहा एक स्टूडेंट है उसे परीक्षा में पास होना है, वो भगवान को याद करता है कि भगवान पास करा देना। अच्छा पास हो गए तो फिर भगवान अच्छी नौकरी लगा देना, हाँ, या मेरा बिजनेस सेट हो जाए ऐसा कर देना। अच्छा वो हो गया, अब एक अच्छे घर में शादी करा देना। अच्छा अब शादी हो गई, अब क्या होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए। अच्छा वो भी हो गया, अगर बेटा नहीं है तो एक बेटा हो जाए। तो सांसारिक कामनाएं हमारी, हम जब भी भगवान के सामने खड़े होते हैं, आप कभी भी जाते हैं मंदिर में बिना मांगे आते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मांग होती है हमारी भगवान से, और सिर्फ मांगते नहीं है सौदा भी करते हैं। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो कितने रुपए का प्रसाद, या फिर जो भी, हम जितनी भी हमारी क्षमता है हम भगवान को कहते हैं ये हम करेंगे, चाहे समाज के लिए कुछ करेंगे, जो भी। अगर पूरा हो गया तो भगवान को वो मिलेगा, और अगर पूरा नहीं हुआ तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, एक मनुष्य जैसा। हम सोचते हैं कि भगवान भी, माना उसको हमने मनुष्य की श्रेणी में लाया, कि जैसे एक इंसान बिना लेन देन के काम नहीं करता, भगवान भी बिना लेन देन के हमारा काम नहीं करेगा। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। हम अनुभवी हैं अपने जीवन में। आपके सामने कोई भिखारी आता है कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। और हम देखते हैं कि अगर ये काम कर सकता है तो हम कभी भी उसको भीख नहीं देते, कह भी देंगे कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, है ना। लेकिन अगर वो दया का पात्र लगता है सचमुच की इसे मिलना चाहिए, तो हम कितना देते हैं? मेरे पॉकेट में सबसे कम नोट वही हम निकाल करके उसको देंगे। अब भगवान के सामने खड़े होकर हम मांग रहे हैं, हाँ, तो भगवान भी हमें जज करेगा या नहीं करेगा, मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिलना चाहिए तो जरूर मिलेगा, और अगर नहीं मिलना चाहिए तो नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमें इतना दिया है, इतना अद्भुत मानव शरीर मिला है हमको। हम असंभव को संभव करने की ताकत रखते हैं, सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव योनि। हम कर्म करने की बजाय छोटी छोटी चीजें भगवान से जाकर मांग रहे हैं, तो भगवान को भी मांगने वाले तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं हैं, हम इस भाषा का ही प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम परमात्मा की संतान हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम अधिकारी हैं। बच्चे घर में मांगते नहीं हैं, माँ बाप खुद सब प्रबंध करते हैं, इनको क्या भोजन देना है, इनको कैसे रहने की सुविधा देनी है, क्या इनके वस्त्र होने चाहिए, इनका कौन सा स्कूल होना चाहिए, इनका भविष्य क्या बनाना है, कौन चिंता करता है? माता पिता खुद कर रहे हैं ना। तो जब हमने ये संबंध का अनुभव परमात्मा से किया, वो हमारा मातपिता है, तो फिर वो स्वयं ही हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, हमें उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा को हम संबंध से याद करते हैं राजयोग में, जैसे कहा, और संबंध में समानता के आधार पर समीपता होती है। जितना हम समान होते हैं, जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं जो विचारों में समान है उनकी दोस्ती हो जाती है, जो प्रोफेशन में समान है उनकी दोस्ती हो जाती है, यानी दो डॉक्टर आपस में मिलेंगे बहुत जल्दी फ्रेंड हो जाएंगे, दो बिजनेसमैन मिलेंगे क्योंकि कुछ समान है उनमें, दो बच्चे आपस में मिलेंगे तो भी। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ भी हमारी समानताएं हैं ना। जैसे दुनिया में संबंध भी करते हैं ना, तो भी देखते हैं कि समानता है या नहीं। तो कौन सी समानता? गुणों की समानता देखते हैं, वो कुंडली मिलाएंगे और देखेंगे कि इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो गुण मिलते हैं तो ज्योतिषी कहेगा योग है, और गुण नहीं मिलते तो कहेगा ये टिकेगा नहीं, ये संबंध रहेगा नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ जो हमारी समानताएं हैं, वो तीन प्रकार की समानताएं हैं। एक है स्वरूप की समानता, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। फिर दूसरा है स्थान की, परमात्मा परम धाम निवासी है, आत्मा भी परम धाम निवासी है। फिर तीसरा है गुणों की समानता, परमात्मा जिन गुणों में सागर है, आत्मा उन्हीं गुणों का स्वरूप है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान है। तो ये समानता का अनुभव करते हुए हम परमात्मा को याद करते हैं। तो स्वरूप की समानता, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो राजयोग में हम सबसे पहले अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं। आप दो दिन से तीन दिन से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपको जो चिंतन देते हैं, सबसे पहला संकल्प क्या होता है? मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो अगर हम देह समझ करके परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा तो सदा ही निराकार है, वो तो सदा ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो हमारे जैसे देह धारण नहीं करते, लेकिन आत्मा पर, हमारी आत्मा पर ये शरीर रूपी आवरण है। तो जब हम जैसे दो तारों को जोड़ते हैं, तो हम उनका रबड़ हटाते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं तब करंट फ्लो होता है। तो ऐसे ही शरीर का जो आवरण है आत्मा के ऊपर, जब हम उसकी कॉन्शियसनेस से अपने आप को न्यारा करते हैं, यानी देह भान से न्यारे होकर आत्मा समझकर जब हम आप याद करते हैं परमात्मा को, तो हमारी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, तब हमें वो योग का अनुभव होता है। जैसे मानो हमें रेडियो ट्यून करना है, एफएम रेडियो सुनते हैं हम, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी पर मुझे रेडियो सेट ट्यून करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझे वो रेडियो स्टेशन सुनाई नहीं देने वाला है, या मुझे टीवी देखना है तो भी मुझे चैनल ट्यून करना पड़ेगा तब जाकर के मैं वो चैनल देख सकती हूँ। तो शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी तो हायर फ्रीक्वेंसी है ना, वो तो सदा ही निराकार स्थिति में है। मुझे भी अपने आप को निराकार स्थिति में ले जाना होता है तब मेरी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच होती है और मैं उनकी शक्तियों को ग्रहण कर पाती हूँ। तो ये समानता का अनुभव, ये राजयोग का फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले आत्म चिंतन करते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं, फिर परमात्मा के साथ हमारी धाम की समानता है। शिव बाबा परम धाम निवासी हैं, मैं आत्मा भी परम धाम की रहने वाली हूँ, तो जैसे पिता और पुत्र का घर एक ही होता है, कोई हमारे ही स्थान का है तो उनसे हमें बहुत जल्दी अपनापन लगता है। आप यहाँ आए हैं, आपको कोई मिलते हैं, आप जिस सोसाइटी के रहने वाले हैं वो भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप जितना जल्दी उनसे समीप हो जाएंगे उतना औरों से नहीं, वो आपको बहुत अपने लगेंगे, अरे ये तो मेरे ही शहर के हैं, मेरे शहर की नहीं मेरी ही सोसाइटी के हैं। तो शिव बाबा और हम एक ही घर के रहने वाले हैं तो उससे हमें ईश्वर से समीपता का अनुभव होता है। और दूसरा, मानो कोई जो भी हमारे हैं, आप जहाँ से भी आए हैं, वो वहाँ रहते हैं और यहाँ रहते हुए हम कोई कारण से उनको याद करते हैं तो हमारा मन कहाँ चला जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, उसी स्थान पर जहाँ वो रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई दिल्ली में किसी के माँ बाप रहते हैं और आप यहाँ उन्हें याद करते हैं तो मन कहाँ जाता है, दिल्ली में जाएगा। तो शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और यहाँ बैठे हुए हम शिव बाबा को याद करते हैं तो मन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। हाँ, तो ये राजयोग का दूसरा स्टेप है कि हम मन को परम धाम में ले जाते हैं क्योंकि शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। वैसे हम किसी से भी मिलना चाहते हैं तो तीन तरह से हम मिलते हैं, एक तो हम उसके स्थान पर चले जाएं या उसको हम अपने स्थान पर बुला लें या कोई तीसरा ही स्थान हम निश्चित करें। हाँ, बाहर जाकर कोई बगीचे में, कोई समुन्दर के किनारे, ऐसे भी लोग मीटिंग करते हैं, कोई होटल रेस्टोरेंट में। लेकिन अगर हम भगवान को यहाँ बुलाएंगे तो हम तो पहले ही दुनिया में इतने उलझे हुए हैं, तो शिव बाबा को यहाँ बुलाएंगे तो हम उनको याद नहीं कर सकते। इसीलिए हम स्वयं ही संसार से अपने मन को न्यारा करके परम धाम में ले जाते हैं ताकि वो शांति का भी हमें अनुभव हो और शिव बाबा को भी हम याद कर पाए। और तीसरी है हमारी गुणों की समानता। शिव बाबा गुणों के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, वो प्यार के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, और हम आत्माएं भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप हैं। तो हम उनके गुणों को स्मरण करते हुए याद करते हैं। भक्ति में भी हमने यही किया है, करते रहे हैं कि हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, है ना, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। वो क्या है, कीर्तन करना माना उनकी कीर्ति गाना, स्तुति करना माना महिमा करना, क्योंकि उनके उनके कोई अवगुण या दोष तो है ही नहीं, भगवान तो गुणों का सागर है तो हम उनके गुणों की तो महिमा करेंगे, उनके गुणों का ही तो गायन करेंगे। आप कृपा निधान हो, आप सुखदाता हो, आप दया के सागर हो, करुणा के सागर हो, क्या कहते हैं हम, यही भगवान को कहकर के याद करते हैं। तो राजयोग में भी हम ऐसे ही याद करते हैं, लेकिन अंतर ये है, भक्ति में हम जोर जोर से बोलते हैं, जो भी कीर्तन भजन करते हैं हम मुख से बोलते हैं, साजों और बाजों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी शक्तियां बहुमुखी हो जाती हैं, यानी हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन राजयोग में हम शांति से परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हैं, मन ही मन उन्हें हम याद करते हैं, तो हमारी शक्तियां अंतर्मुखी होती हैं, और अंतर्मुखी होने से हम उन गुणों का स्वरूप बनते हैं। जिन गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं वो गुण हमारे कर्म व्यवहार में आने लगते हैं, हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा बनने लगते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान करना कहते हैं ना? तो हम गाते नहीं हैं, मुख से नहीं गाते हैं, लेकिन मन ही मन उसका चिंतन करते हैं, उसे हम याद करते हैं। अब कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी भगवान से हम और कुछ नहीं मांगते, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सुख शांति मांगते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, ये तो मांग सकते हैं, क्या कहेंगे, मांग सकते हैं हाँ या ना, जो समझते मांग सकते हैं वो हाथ उठाइए। अच्छा, कुछ जो समझते नहीं मांगने की जरूरत नहीं है वो हाथ उठाइए। अच्छा, मेजॉरिटी है, जरूरत नहीं है। हाँ, सचमुच हमें परमात्मा से ये भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जब उनके गुणों का स्मरण करते हैं तो स्वतः ही हम सुख शांति का अनुभव करने लगते हैं। आप सागर के किनारे जाएंगे तो आपको सागर से हवा मांगनी पड़ती है, उसका गुण है, वो अपने आप हवा देता है, बस हमें सागर के समीप जाने की जरूरत है। आग के पास बैठे हैं तो गर्मी मांगनी पड़ती है, अपने आप गर्मी मिलती है, लेकिन आग के पास बैठना होता है। ऐसे ही भगवान के संग में हमारा मन चला गया, उसके समीप हम हैं, अपने आप ही हमें शांति सुख आनंद का अनुभव होता है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो उनका सागर है, वो वही रेडिएट कर रहा है, तो हमें अपने आप वो मिलता है। फिर जब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं तो किन अवस्थाओं से हमारा मन गुजरता है, शुरू में हमें बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है ना, मन की गति बहुत तेज है, एक सेकंड में मन कहाँ से कहाँ होता है, तो हम चिंतन करना शुरू करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और पहुँच गए कहाँ, हॉल से बाहर, आज साइट सीन जाना है, बुकिंग हो गई है, टाइम पर सब आ जाए, बस मानो ना, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, काम याद आएगा कि अब क्या करना है यहाँ से जाकर के, लेकिन फिर याद आता है नहीं, अभी हम योग में बैठे हैं, फिर एक दो विचार करेंगे और फिर तुरंत तीसरा कोई विचार आ जाएगा, एक अंतर्द्वंद मन के अंदर होता है, कई बार तो इतने नेगेटिव विचार भी आने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा खाली बैठते हैं तो मन के अंदर इधर उधर के विचार आना साधारण सी बात है, और फिर किसी ने हमें हर्ट किया हुआ है तो वो ज्यादा चलता है मन के अंदर, तो कई बार क्या सोच देखते हैं, योग करने तो बैठे लेकिन सिर भारी हो गया है ना, और ही जैसे कि हम अशांत हो गए, फिर सोचते हैं 15 मिनट बैठे लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, और ही टाइम वेस्ट हो गया मेरा, इससे तो हम कोई काम करते हैं, माना एक कैसे कैसे विचार आते हैं जब हम शुरू में योग करते हैं तब, तो ये प्रारंभ की अवस्था में थोड़ा मुश्किल होगा ही, क्योंकि जिंदगी में जो भी काम हम नया शुरू करते हैं वो हमारे लिए शुरू में आसान नहीं होता है। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं एक दिन में सीख जाते हैं, कितना टाइम लगता है, लेकिन हम धैर्य रखते हैं तो आखिर हम गाड़ी चलाना सीख ही जाते हैं, चाहे एक महीना ही क्यों ना लग जाए। और फिर जब गाड़ी चलाना सीख जाते हैं फिर तो आप फोन पकड़ करके भी गाड़ी चलाते हैं, बात करते करते भी गाड़ी चलाते हैं, इतना हम उसमें कुशल हो जाते हैं। तो ये भी, ये तो और ही मन हमारा सूक्ष्म है। जब भौतिक उपलब्धियों के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है तब कुशलता आती है, तो फिर मन के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करना बनता है कि नहीं बनता। तो इसीलिए हमें अभ्यास करते हुए अगर शुरू में अनुभव नहीं हुआ तो निराश नहीं होना है। मानो कोई दीवार तोड़ने में हमने 100 हथौड़े लगाए, 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी तो क्या पहले 99 हथौड़े बेकार गए? नहीं, हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो जाकर टूट गई। तो हमारा हर अभ्यास हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो 2 बार 4 बार 6 बार आपको अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार में आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली, हाँ वो ईश्वरीय सुख का अनुभव हुआ, फिर बाद में आप टाइम ढूंढेंगे कब टाइम मिले और मैं फिर से वही अनुभव करूं, है ना। योग को आप मिस नहीं करना चाहेंगे, ये स्थिति हो जाती है फिर ना। शुरू में बैठना मुश्किल होता है लेकिन बाद में फिर छोड़ना मुश्किल होता है, इतना उसका आनंददायक अनुभव होता है हमारे मन के लिए। तो ये प्रारंभिक अवस्था में, फिर दूसरे चरण में जैसे मैंने कहा आत्मचिंतन करते हुए हम मन को परम धाम में ले जाते हैं। शिव बाबा को हम अंतर चक्षु से देखते हैं, इन आंखों से तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अपने मन बुद्धि रूपी चक्षु से हम परमात्मा को अवलोकन करते हैं और उनके समीप अनुभव करते हुए हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं। जो भी हमारे भाव हैं और संबंध हैं हम परमात्मा के प्रति अनुभव कर सकते हैं जब हम उनके साथ हैं, परम धाम में हैं। तो जो संबंध से आप अपने भाव व्यक्त करना चाहो, वो मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, खुदा दोस्त हैं, या जो भी मेरे बंधु हैं, जो भी हम समझते हैं ईश्वर के लिए, वो हम अपने मन की बात उनको कहते हैं। या मेरे मन पर कोई बोझ है, मेरे लिए जीवन में कोई चिंता है, परेशानी है, वो भी हम उनके सामने कह सकते हैं। तो ये हमारा है परमात्मा से रू रिहान। जब हम परमधाम में ईश्वर के साथ संबंध में हैं तो संबंधों में हम बातें करते हैं आपस में, अपने दिल की बात कहते हैं, और जैसे कि हमारा मन खुश हो जाता है या मन हल्का हो जाता है, तो इस तरह से हम अनुभव करते हैं। फिर जैसे कहा, सारे संबंध हम परमात्मा के साथ अनुभव कर सकते हैं और धीरे धीरे मन एकाग्रता की स्थिति में चला जाता है। अब हमें ज्यादा चिंतन नहीं करना होता, लेकिन जैसे मन परमात्मा के उन गुणों में स्थिर हो गया, शांति है, माना सिर्फ शांति है, शांति का विचार भी नहीं है, सिर्फ मन शांत है, या मन में आनंद की स्थिति है तो आनंद ही है, जिसको लोग समाधि की स्थिति भी कहते हैं, माना चिंतन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मन उस स्थिति में स्थित हो गया। ये ऐसे ही एकाग्रता, जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो निश्चित है जब सिखाते हैं तो बीच बीच में परीक्षा भी लेते हैं कि ये कहाँ तक इसमें निपुण हो रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा रखी और एक पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया बनाकर रखी और उसकी आंख पर निशाना लगाना था। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर बताया कि आंख पर, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तो पूछा पहले कि मेरे प्रश्न का जवाब दो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने कहा, गुरुजी सब दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, डालियां, पत्ते, फूल, चिड़िया भी दिख रही है, उसकी आंख भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा, तुम हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन से भी पूछा, तो उसने कहा, गुरुजी मुझे भी सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, तो फिर तुम भी हट जाओ। फिर भीम की बारी थी, भीम को पूछा तो उसने कहा गुरुजी सब दिखता है, कहा ठीक है तुम भी हट जाओ। फिर अर्जुन आया, अर्जुन एक मिनट खड़ा हुआ और फिर उसने कहा गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुम तीर चलाओ, तो उसने तीर चलाया और वो सीधा चिड़िया की आंख में लगा। तो ये है एकाग्रता, यानी सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई दे, उसके अलावा कुछ दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जब हम एकाग्रता की स्थिति में होते हैं तो सिर्फ हम शिव बाबा को देख रहे हैं, शिव बाबा ही हमारे सामने हैं और उसके अलावा कहीं हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इस एकाग्रता की स्थिति में हमें अनुभूति होती है और इसमें हम अनुभव करते हैं कि परमात्मा की सब शक्तियां मुझ में समा रही हैं और फिर मन परिवर्तन हो जाता है। मानो योग करते समय हमारा मन अशांत था, कोई भी कारण से हम अशांत हो सकते हैं, लेकिन अनुभूति की स्थिति में आते ही मन शांत हो जाता है। कोई कारण से मेरा मन उदास है और मैं हम योग में बैठे, लेकिन अनुभूति की स्थिति तक आते ही मन प्रसन्न हो जाता है, मन में वो खुशी आ जाती है, शक्ति आ जाती है ना। तो मन की स्थिति बदल जाती है, दुखी है मन तो सुखी हो जाता है। तो ये निशानी है कि हमारी चार्जिंग हुई, जब हम योग में बैठे हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई। तो हम योग में रूरिहान कर रहे हैं ईश्वर से, जो सदा हमारे लिए हाजिर है, उपलब्ध है, कहां भी कभी भी हम उनसे बात कर सकते हैं। इंसान हमारे लिए हमेशा उपलब्ध नहीं होता है और वो हमेशा ही हमारी बातें सुने ये कोई जरूरी नहीं है। तो उनसे हम अपने दिल की बात करते हैं और हमारी बातों को वो गोपनीय रखते हैं। कोई इंसान फिर भी कह सकता है किसी को, कोई सभी विश्वास पात्र नहीं होते, लेकिन परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं और हम उन्हें भय से याद नहीं करते, प्यार से याद करते हैं। भक्ति में कई बार लोग भगवान को भय से याद करते हैं कि अगर मैंने अपने ये देवता की पूजा नहीं की तो कहीं मुझे श्राप ना मिल जाए, हाँ कहीं मुझे पाप ना चढ़ जाए, माना ऐसे ऐसे भय होता है उनको। लेकिन भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देते हैं, तो हम प्यार से परमात्मा को याद करते हैं और वो सदा ही हमारे परम रक्षक हैं, क्योंकि वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमें शक्ति देते रहते हैं। और जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं और मन एकाग्रता की स्थिति में होता है, जो बताया कि सिर्फ लक्ष्य ही मेरे सामने है, जब परमात्मा पर ही मेरा मन पूरी तरह से एकाग्र है, तो वो योग अग्नि का रूप लेता है। जैसे आप देख रहे हैं सूरज की किरणें किसी कागज पर पड़ती हैं तो वर्षों पड़ती रहे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमने एक लेंस लगा दिया और वो सूर्य की किरणें फोकस हो गई उस कागज पर, जब हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो वो किरणें एक बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, वो मिनटों में कागज जल जाता है, उसे इतनी गर्मी पैदा होती है ना। तो एकाग्रता जो है वो अग्नि का काम करती है, यानी जो हमारे पूर्व जन्मों के या पुराने हमारे विकर्म हैं वो उसमें भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है, शुद्ध बनती है। तो ये आत्मा का शुद्धिकरण भी राजयोग के द्वारा हम अनुभव करते हैं। आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग के साथ साथ हम अपने आसपास के वातावरण को भी चार्ज करते हैं, हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। अभी आप यहाँ आए हैं ज्ञान सरोवर में, आपको अनुभव होता है कि चार्ज्ड एटमॉस्फियर है। किसको लगा ऐसा? देखो मेजॉरिटी को लगा। तो क्यों चार्ज्ड है? क्योंकि यहाँ पर हम योग अभ्यास करते हैं, तो हम अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी चार्ज कर लेते हैं। तो अपने घर परिवार में भी जहां हम योग करेंगे वो हमारा चार्ज हो जाएगा। तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये राजयोग मेडिटेशन है। अब ये आधार था योग का, लेकिन अब विधि क्या है? तो बैठेंगे हम, हमारी बैठक सहज बैठक होती है राजयोग में। जैसे कहा, कोई कठिन क्रियाएं हमें नहीं करनी होती, कोई पोज नहीं बनाने होते, लेकिन जिस बैठक में हम 20 मिनट से आधा घंटा स्थिर होकर बैठ पाए, वैसे हम सुखासन में, जिसे साधारण भाषा में पालथी मारकर बैठना कहते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठते हैं तो ज्यादा बेहतर है, पर नहीं बैठ सकते, कईयों को आयु के कारण घुटने की तकलीफ होती है, कमर की तकलीफ होती है, तो फिर जैसे हम बैठना चाहें, कुर्सी पर, सोफे पर, जहां हम आराम से बैठ सकते हैं वो हम बैठक ले। तो राजयोग में कोई बंधन नहीं। जैसे कहा, चलते फिरते भी हम याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बैठना ही है, लेकिन अगर हम चलते फिरते भी मन को परमात्मा में लगा सकते हैं, जैसे किसी मनुष्य को हम याद करते हैं, चलते फिरते भी याद कर लेते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा को भी हम चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। फिर राजयोग अभ्यास में हम आंखें खोल कर योग करते हैं, खुली आंखों से योग करते हैं। सामान्यतः हम क्या समझते हैं, ध्यान करना माना आंखें बंद करके ध्यान करना। आंखें बंद करने से हमारी एकाग्रता अच्छी होगी, ये हमारा भ्रम होता है। भ्रम क्यों है? कि आंखें बंद करते हैं तो दो बातें हैं। पहला, हम आंख बंद करके सोते हैं। अब हम योग करने बैठे और अगर हम थोड़ा भी थके हुए हैं तो क्या होने वाला है? आंख बंद करते ही 5 मिनट में सो जाएंगे। यहां भी जब हम योग देते हैं तो हम देखते हैं, सभी नहीं लेकिन कोई कोई सो जाते हैं, है ना? तो निद्रा योग थोड़ी करना है हमको, हम राजयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए एक कारण ये होता है। और दूसरा कारण, आंख बंद करके ही हम सपने देखते हैं, सोने के बाद ही सपने देखते हैं ना, तो आंख बंद करते ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, क्योंकि हम सब कॉन्शियस माइंड से सपने देखते हैं, उसमें अनेक स्मृतियां हैं, इस जन्म की, पूर्व जन्मों की, कहां कहां की बातें चलती हैं। अब ऐसा ही होता है, आंख बंद करके हमने योग करना शुरू किया, मन कौन सी स्मृतियों में चला जाएगा? आप सोचेंगे ये बात मुझे अभी याद आ रही है, अभी क्यों याद आ रही है? अब क्यों याद आ रही है? क्योंकि मैंने अपना सब कॉन्शियस माइंड ट्रिगर कर दिया। तो उन स्मृतियों से मन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और योग हम कर ही नहीं पाते। लेकिन खुली आंख में, एक तो ये राजयोग कर्म योग है, जैसे आपको बताया, आप कर्म करते हुए अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? तो इसीलिए खुली आंख से हम अभ्यास करते हैं ताकि कर्म करते हुए भी हम भगवान को याद कर पाए। और खुली आंख से भी हमें मन को एकाग्र करने की आदत है। कोई भी काम में हमारा मन मगन है, खुली आंख में ही होता है। आप पढ़ रहे हैं कुछ मानो, और उस पढ़ने में आप पूरी तरह से उसी में हैं। कोई आपके पास से गुजर जाता है, फिर कोई पूछता है, ये गया यहां से, आपको आपने देखा, तो आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं मालूम। आंखें तो खुली थी, आप पढ़ रहे थे तो आंखें तो खुली थी ना, फिर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मन कहीं और है। भले आंखें खुली हैं लेकिन मन कहीं और है, तो देखते हुए भी नहीं देखा। कई बार ऐसा होता है, कोई बोल जाता है तो भी हम सुनते नहीं है, क्योंकि हमारा मन नहीं सुन रहा, मन कहीं और है। तो राजयोग में भी मन को हम कहीं और ले जाते हैं ना। कहां ले जाते हैं? कहां ले जाते हैं? हम परमात्मा के पास, परम धाम में चले गए। और जब मन उस लगन में है तो फिर मेरे सामने से कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है, आवाज कर रहा है, मुझे दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता और सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देता। अगर हमारा ध्यान नहीं है तो ढोल भी बज रहे हों तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपने जीवन में अनुभवी हैं, और अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो फिर छोटी सी आवाज भी मुझे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो इसीलिए खुली आंख से हमारी एकाग्रता अच्छी होती है। बंद आंख में शुरू शुरू में हमें लगता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, शुरू में थोड़ा ना ध्यान अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है फिर हमारे लिए योग करना मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, अगर कोई अनुभव हो रहा है, योग लग गया और फिर कोई अच्छी अनुभूति हो रही है हमें और उससे हमारी आंख बंद हो गई, तो हम आंख बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करना ही नहीं है या पलक भी झपकानी ही नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। राजयोग फिर कोई हठ योग नहीं है, जैसे आपको बताया। फिर राजयोग अभ्यास में हम कई बार लाइट्स का प्रयोग करते हैं ना, बाकी बातें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपने देखा, हमने कई बार ये व्हाइट लाइट की बजाय रेड लाइट करते हैं योग अभ्यास के समय। तो रेड लाइट जो है वो परम धाम का रंग है, हालांकि वही रंग तो हम यहाँ नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन एक मन को एक कंडीशनिंग देने के लिए कि हाँ अभी हमें अपने मन को परम धाम की ओर ले जाना है। और जो लाल रंग होता है वो स्टॉप का सिग्नल होता है। तो अभी मुझे अपने मन से सांसारिक विचारों को स्टॉप करके आध्यात्मिक विचारों को हमें अपने मन में लाना है। तो ये भी हमें उससे सिग्नल मिलता है कि कुछ समय के लिए मन को ईश्वर की ओर मोड़ना है। फिर तीसरा, लाल रंग जो है वो शक्ति का भी प्रतीक होता है। तो योग अभ्यास से हमें शक्ति अपनी जमा करनी है, इसलिए भी हम रेड लाइट का प्रयोग करते हैं। फिर म्यूजिक बजाते हैं, हम म्यूजिक प्ले करते हैं, कोई ना कोई ईश्वर स्मृति का गीत होता है। तो ये जो गीत हैं ये हमारे मन को दिशा देते हैं। प्रारंभ में ये हमें सहयोग देते हैं एकाग्रता के लिए। हमेशा ही हमें कोई लाइट और गीत चाहिए, है ना, ये सब सुविधाएं चाहिए, इसकी कोई हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन शुरू शुरू में जब हमें योग मुश्किल लगता है तो इनसे हमें मदद मिलती है। दुनिया में भी हम देखते हैं जिस तरह के गीत हम सुनते हैं हमारे मन के भाव वैसे ही होने लग जाते हैं। अगर आप देशभक्ति का गीत सुनेंगे तो देशभक्ति के भाव मन में आएंगे। अगर आप कोई ऐसा ही प्रभु भक्ति का गीत सुनेंगे तो प्रभु की भक्ति के भाव मन में आएंगे। कोई ऐसे ही फिल्मी गीत सुनेंगे, साधारण फिल्मी गीत सुनेंगे तो वैसे ही भाव बनने लगेंगे। तो यहाँ भी जब हम परमात्मा की स्मृति का गीत सुनते हैं तो मन किन्हीं भी विचारों में होता है उसके भाव बदलने लगते हैं और हमें मदद मिलती है। तो इसीलिए यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है आप देखते हैं, पहले हम 2-3 मिनट परमात्मा को याद करते हैं और प्रभु स्मृति का गीत होता है। हम अपने घर में कोई स्थान निश्चित कर सकते हैं जो हमें लगता है कि एकांत और शांत स्थान है, और सबसे उत्तम समय है राजयोग के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त यानी सवेरे 4 बजे उठकर योग अभ्यास करना। तो यहाँ पर आपको, आपने किया नहीं, आपको नहीं कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में आने के लिए। तो यहाँ पर जो नियमित यहाँ आते हैं, अच्छा जो आए ब्रह्म मुहूर्त में वो हाथ उठाइए। तो ऐसे ही आप अपने स्थानों पर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अपना समय होता है, माना इसमें हमने अभी अपनी दिनचर्या शुरू ही नहीं की है, तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे पास टाइम नहीं है। बस ये है कि अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदलना है, क्योंकि आज की जीवन शैली देर रात तक जागना और सवेरे देर से उठना, थोड़ा परिवर्तन करना होगा कि समय से सोना और समय से उठना। तो अगर हम ये कर पाते हैं तो बहुत सुंदर अनुभव हमें ये ब्रह्म मुहूर्त के समय योग अभ्यास के होते हैं। फिर भी अगर हम नहीं उठ पाते, हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम नहीं सो पाते जल्दी, तो फिर हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। फिर सायंकाल का समय भी उत्तम समय होता है, जब हम अपने सब कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं तो उस समय भी हम 20 मिनट आधे घंटे का समय निकाल सकते हैं। और अपने कर्म के बीच बीच में भी जब हमें लगता है एक मिनट दो मिनट भी अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो उससे भी अंतर आता है, हमारे हर कर्म में उससे अंतर पड़ता है, हमारे मन की स्थिति में भी अंतर आ जाता है। तो इस तरह से हम योग का अभ्यास, जो विधि बताई आपको और जो आधार हैं परमात्मा से समीपता का अनुभव करने के, उन आधारों को हम प्रयोग में लाते हैं तो सहज, ये सहज राज योग है, यानी हमें मुश्किल नहीं होता है, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है तो एक बुजुर्ग भी कर सकता है, कोई बीमार भी कर सकता है तो स्वस्थ भी कर सकता है, ना सहज राजयोग है। तो बहुत सहज हम इस योग का अनुभव कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो अभी हमने जो विधि समझी है उस विधि के अनुसार हम आज योग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं। अपने मन को तैयार करें एक अंतर यात्रा के लिए, मन को आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से, विचारों से समेट लें। जैसा चिंतन मैं आपको दूंगी उसको अनुभव करें। स्वयं को मस्तक के मध्य में आत्मनिश्चय करें, मैं एक चमकते हुए सितारे के समान ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा अचर अमर अविनाशी हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना कर्म करने के लिए, अपना पात्र निर्वाह करने के लिए मैंने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूं। शांति मुझे पसंद है, शांति में ही सुख समाया है। शांति में ही शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। परम धाम से मैं इस सृष्टि पर आई हूं, ले जाएं मन को इस भौतिक जगत से पार, उस दिव्य लोक में प्रकाश के लोक में जहां सर्वत्र शांति है, मैं आत्मा स्वयं को परमात्मा के समीप और सन्मुख अनुभव कर रही हूं। शिव बाबा मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। वो शांति के सागर हैं, उनकी याद से मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं। शिव बाबा आप ही मेरे सच्चे मात पिता हो, मेरे सत शिक्षक हो, सतगुरु हो। मैं सौभाग्यशाली हूं, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है। आपका प्यार अनुभव कर मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। आप ही मुझे सद ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान के सागर हैं, मुझे सदगति देने वाले मेरे सच्चे सतगुरु हैं। मेरे कल्याणकारी परम हितैषी हैं। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं सदा ही आपकी श्रीमत पर चलूंगी और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं अब स्वयं को पुनः इस साकार लोक में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं। लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति।